कौमें क्यों गरीब या नाकाम होती हैं। आज इस मजमून को लिखते हुए मुझे अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर बहुत याद आ रहा है। हजारों साल नरगिज अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं इसकी तशरीह इस तरह करूंगा कि कौमों को हजारों साल तक सही रास्ता नजर नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। किसी भी कौम में विजन या देखने की सलाहियत बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। इस वक्त गरीब और अमीर मुल्कों की इनकम में 54 गुना का फर्क हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर गरीब मुल्कों में लोगों की औसत इनकम $1,000 है तो अमीर मुल्कों में लोगों की औसत इनकम $54,000 है। इसलिए कौमें क्यों गरीब या नाकाम होती हैं हमारे वक्त के सबसे अहम सवालों में से एक है। काफ़ी मुफक्किर और माहरीन ने सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है। मैं इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करूँगा। MIT के इकोनॉमिस्ट डेरन एस मैंगलू और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेम्स रॉबिन्सन ने अपनी नई किताब वाई नेशंस फेल में तकरीबन 15 साल की रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने मुल्कों में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स कायम करने में कामयाब हो जाती हैं, और वो कौमें गरीब रहती हैं जो अपने यहाँ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट ख़त्म करने में नाकाम हो जाती हैं। इंक्लूसिव या बशमूल सियासी और इक्तिसादी इदारे वो होते हैं जो हर शहरी की सलाहियतों को उभरने का पूरा मौका देते हैं और अमीरी गरीबी ज़ात नस्ल ज़बान या मज़हब का तफरीक किए बगैर हर शहरी को तरक्की करने का पूरा मौका फराहम करते हैं और उसकी जान माल की हिफाजत करते हैं। बशमूल इदारे सियासी कुव्वत और इक्तिसादी मौाक़े को पूरी सोसाइटी में बराबर तकसीम करते हैं और लोगों के माल और हकूक, जिनमें ख्यालात और अफकार की आज़ादी भी शामिल है, की हिफाजत करते हैं। एक्सट्रैक्टिव या मखसूस इदारे वो होते हैं जो सियासी कुव्वत और इक्तिसादी मौाक़े को सिर्फ एक छोटे ग्रुप के पास रहने देते हैं, यानी कि जो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ एक मखसूस ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बादशाही या आमराना हुकूमत मखसूस इदारे की एक मिसाल है। इस निज़ाम में मुल्क की ज़्यादातर दौलत बादशाह या आमिर और उसके खास साथियों के पास जमा होती रहती है। बादशाह या आमिर कानून से बालतर होता है और जब मर्जी आती है किसी की भी जान या माल ले सकता है। हकीकी जमहूरी इदारे बशमूल इदारे होते हैं। इन मुल्कों में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी की जान या माल नहीं ले सकता, क्योंकि इन मुल्कों में कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं होता और कानून हर फर्द की यकसा हिफाजत करता है। वाई नेशंस फेल किताब ये कहती है कि कल्चर, जुग्राफिया, मौसम, माहौल या कुदरती ज़राए यानी दरिया, समंदर, तेल, हीरे या दूसरे मादनियात से भी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन मुल्कों में मखसूस इदारे कायम हों। इन ज़राए के बावजूद कौमें गरीब रहती हैं और सिर्फ उनका हुक्मरान तबका अमीर होता है। ये भी हकीकत है कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में मखसूस इदारे ही होते हैं और उस वक्त तक रहते हैं जब तक अवाम इन इदारों को सियासी जद्दोजहद करके ख़त्म ना कर दें। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें ज़्यादातर कौमें नाकाम रहती हैं। आइए अब हम तकरीबन 800 साल की तारीख के हवाले से बशमूल और मखसूस इदारों को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्यों कुछ कौमें बहुत अमीर हो गईं और ज़्यादातर कौमें गरीब हैं। इंग्लैंड और मगरबी और मशरकी यूरोप। दुनिया में सबसे पहले बशमूल इदारों को कायम करने की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब सन 1215 ईस्वी में अशरफिया और फ्यूडल्स ने बादशाह को मैग्ना कार्टा के तफसीली माहदे पर साइन करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में पहली मर्तबा मुल्क का कानून हर आज़ाद शख्स पर लागू था, बादशाह समेत। अब बादशाह के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जिसकी चाहे जानो माल ले ले या जब चाहे टैक्स बढ़ा दे या एक ग्रुप को पूरी आज़ादी के साथ इक्तिसादी मौाक़े फराहम कर सके। 1988 में यानी मैग्ना कार्टा के तकरीबन 450 साल के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपने हकूक बढ़ाने के लिए फिर जंग की और इसमें कामयाब हो गए। इसको तारीख में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी शानदार इनकलाब कहते हैं। जब आम लोगों को सियासी और कानूनी हकूक मिले तो तरक्याती कामों पर काम हुआ। ख़ास तौर पर रोड, नहरें और रेलवे बनाए गए जिनकी वजह से सनती इनकलाब को शुरू होने का मौका मिला। ब्रिटिश हुकूमत ने तमाम लोगों तक तालीम पहुंचाने का फैसला 1870 में किया था और 1891 तक तालीम सबके लिए फ्री थी। दुनिया और ख़ास तौर पर यूरोप की तरक्की में 5 बुनियादी रुकावटें रही हैं। जो सबसे अहम रुकावट है इसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, इसके बारे में आपको सोचना है, जबकि 4 रुकावटों का ताल्लुक मखसूस यानी एक्सट्रैक्टिव इदारों से है। इन 4 रुकावटों में से एक बादशाही निज़ाम था जिसको इंग्लैंड ने सबसे पहले ख़त्म किया, एक ग़ुलामी निज़ाम था उसको भी सबसे पहले इंग्लैंड ने ख़त्म किया, एक जागीरदारी निज़ाम था जिसमें बड़े बड़े ज़मीनें एक छोटे ग्रुप के पास थीं जो टैक्स भी नहीं देते थे, तमाम टैक्स सिर्फ छोटे ज़मींदारों और गरीब किसानों और आम लोगों से ही लिया जाता था। खास बात यह है कि चर्च यूरोप का सबसे बड़ा जमींदार था, जो कि खुद तो टैक्स देता नहीं था बल्कि अपनी जमीनों में काम करने वाले किसानों से खुद टैक्स वसूल करता था। पॉप और दूसरे मजहबी लीडर्स और उनके खानदान वाले शाहाना जिंदगी गुजारते थे। सन 1800 तक लोगों ने जद्दोजहद करके मगरबी यूरोप से जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया था, जबकि मशरकी यूरोप में लोग ऐसा नहीं कर सके। इसका नतीजा ये निकला कि अगले कुछ सौ सालों में मगरबी यूरोप मशरकी यूरोप से बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। यूरोप की तरक्की में एक बुनियादी रुकावट चर्च का कंट्रोल था। चर्च की हुक्मरानी के दौर में मजहब और सियासत मिले हुए थे, चुनाचे मुल्क के कानून मजहबी रहनुमा बनाते थे। मजहबी इंतहा पसंदी का यह आलम था कि हर उस बात की सजा मौत थी जो चर्च के अकीदे के खिलाफ थी, यहाँ तक कि साइंस की किताब पढ़ने की सजा भी मौत थी। मशहूर साइंसदान ब्रूनो और गैलीलियो दोनों ने साइंसदान कोपरनिकस की इस बात की तायद की थी कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, क्योंकि ये बात चर्च के अकीदे के खिलाफ थी। इस जुर्म की सजा में ब्रूनो को 17 फरवरी सन 1600 में जिंदा जलाकर मार दिया गया। मैं इस तारीख को नहीं भूल सकता जब मजहबी जुनून में अंधे लोगों ने एक अजीम साइंसदान को जिंदा जलाकर मार दिया। गैलीलियो ने झूठ बोलकर अपनी जान बचाई, फिर भी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसने अपनी बकिया जिंदगी कैद में गुजारी। गैलीलियो की किताबें तकरीबन 100 साल तक उस लिस्ट में शामिल थीं जिनको पढ़ने की सजा मौत थी। 100 साल की मजहबी जंगों जिनमें 3 से 11 मिलियन लोग कत्ल हुए के बाद ही यूरोप ने यह सबक सीखा कि जिन माशरों में लोगों को उनके अकायद की वजह से सजा दी जाए वहाँ सिर्फ जुल्मों से तम कत्ल गारत और तशद्दुद के अलावा और कुछ नहीं फलता फूलता। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी कौम को यह सबक सीखने में कितना अर्सा लगेगा। इस मजमून के अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि क्यों साउथ कोरिया 10 गुना अमीर बन गया तो नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में, सल्तनत उस्मानिया और इंडिया में क्या हुआ, जापान और चाइना किस तरह 2 अलग अलग रास्तों पर निकल गए। शुक्रिया आपका सुनने का।